अंत में मित्रों इतना ही कहूंगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं, और बचा रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताजा आरंभ, जहां से हर चीज फिर से शुरू हो सकती है। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार केदारनाथ सिंह जी की इन पंक्तियों को मैं हमेशा याद रखती हूँ। इनमें जीवन का सार छुपा है। सच में अंत तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है तो सिर्फ आरंभ, जहां से हम जब चाहें जैसे चाहें एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी ने न जाने कितने लोगों को उनके परिवारों से छीन लिया, और इस दुख में लोग काफी टूट गए हैं, हार गए हैं। ऐसे में बहुत बार हमारा मन सोचने लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा सोचना भूल है, क्योंकि जहां से चाहें हम जीवन को नए सिरे से आरंभ कर सकते हैं। बस जरूरत है हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। यथार्थ ये भी है कि जीवन चलते रहने का नाम है। चुभन के कार्यक्रमों में आकर हम सबको अपनी ज्ञानवर्धक और प्रेरक बातों से अवगत कराने वाले मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी और उनके परिवार ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में उन्हें खो दिया जिनका जाना वो क्षति है जिसे किसी भी तरह पूरा किया ही नहीं जा सकता। शोरी सर की पत्नी श्रीमती लोकबाला शोरी मैम के कोरोना से असामयिक निधन ने हम सबको अंदर तक दुख से झकझोर दिया है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी का भी बस नहीं चलता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं शोरी सर और उनके परिवार के साथ हैं। इस दुखद घटना के बाद पहली बार शोरी सर से जब मेरी बात हुई तो अथाह दुख में होने और स्वयं कोरोना जैसी बीमारी झेलने के बाद भी जिस हिम्मत और जीवट से उन्होंने अपनी बात कही उससे उनके लिए सलाम शब्द ही मुंह से निकलता है। आप जैसे लोग ही ये सिखाते हैं कि कहीं भी अंत नहीं है, बल्कि एक आरंभ हमेशा ही सामने होता है, जहां से हर चीज को फिर से शुरू किया जा सकता है। शोरी जी का कहना है कि हम जानते हैं कि सूरज का निकलना नहीं रुकता, ना ही हवा चलनी बंद होती है, इसी तरह जीवन निरंतर चलता रहता है। कर्म करते जाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है, वरना अकर्मण्य होकर बैठने के तो 100 बहाने होते हैं। और शोरी जी जैसे व्यक्तित्व सिखाते हैं कि क्यों किसी भी परिस्थिति में कर्म करने से रुका जाए, बल्कि जितना भी दुख आए और ज्यादा समर्पण तथा निष्ठा से अपने कर्म में लीन हो जाइए, आपके दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अब वे और निष्ठा से अपने रिसर्च, पुस्तक लेखन और कॉलेज आदि के काम में लग जाएंगे। सच में इंसान की सोच और उसके विचार ही उसे बड़ा बनाते हैं। बातें तो हम सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल कुछ लोग ही कर पाते हैं। ऐसे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब हमने जन्म लिया है तो इस समाज, इस देश का कर्ज हमें चुकाना चाहिए, ना कि चुपचाप किसी कोने में बैठकर अपने दुखों को याद करते हुए जीवन के उद्देश्य को ही व्यर्थ कर दिया जाए। दुख सुख तो चुपचाप दिल में रखने की वृत्तियां हैं, और इनसे ही कई बार बड़े बड़े काम करने की प्रेरणा भी मिल जाती है, और इन कार्यों में लीन होकर हम दुख सुख की अनुभूति से भी कई बार ऊपर उठ जाते हैं। साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कृत कवि लीलाधर जगूड़ी जी की इन पंक्तियों में कितनी सच्चाई है। एक जीना जग जाहिर, एक जीना चुपचाप, दो दो प्रकार से जीना पड़ता है, एक जीवन कई बार। दोस्तों, मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी आज हमारे चुभन के कार्यक्रम में आएंगे और इन बीते कुछ दिनों के बारे में अपने अनुभव तथा विचार हमारे साथ साझा करेंगे, जिन विचारों और सोच ने उनको एक कोरोना योद्धा के रूप में हम सबके सामने खड़ा किया है। तो चलिए आपके विचारों को सुनते हैं। नमस्ते सर।
नमस्कार मैडम।
कैसे हैं सर अब आप?
जी मैं ठीक हूँ।
अच्छा सर, काफी समय बाद आप चुभन पर आए हैं आज सर, और हम सब ने इस बीच आपको बहुत याद किया। जब से हमें पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो सच में बता रही हूँ, आपके लिए इतने मैसेज मेरे पास लोगों के आते थे और सब आपके लिए प्रार्थना करते थे और मुझसे कहते थे कि शौरी सर को सलाम भेजो।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, वेल विशेस का। कोविड की महामारी ने जो है मेरे सारे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था।
जी सर।
और चपेट में ऐसे कि मेरी बेटी जो है उसको कोविड हुआ, वो थोड़ा ठीक हुई 5 दिन क्वारंटीन के बाद, 7 दिन क्वारंटीन के बाद उसका फीवर उतर गया, तो उसके बाद मेरे को फीवर आना शुरू हो गया, मेरे बेटे को आ गया, मेरी वाइफ को आ गया, और हालात कुछ ऐसे बने कि बच्चे तो दोनों ठीक हो गए, लेकिन मैं और मेरी वाइफ दोनों के जो है फीवर भी ठीक हो रहे थे, लेकिन हमारी ऑक्सीजन लेवल काफी डिप कर रहे थे। तो 2 दिन के करीब जो है मेरी डॉटर ने जो है घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर हम दोनों को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के साथ वीडियो कॉलिंग पर इन टच थे। शाम को, 2 दिन के बाद शाम को उसने बोला कि नहीं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए।
जी।
तो 2 मई की उस दिन जो है हमें उन्होंने दिल्ली में, हमारे जाने वाले उन्हीं के हॉस्पिटल में एडमिट किया। हुआ ये कि उसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों अगल बगल बेड पर ही थे, हमारे दोनों की ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो 3 तारीख को मेरा तो थोड़ा सा स्टेबल रहा, लेकिन वाइफ का ऑक्सीजन लेवल और डिप कर गया। तो पहले तो उन्होंने जो है उनको ब्लैडर वाली ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको जो है 6 तारीख को, 6 मई को उनको बोले इनको ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा।
जी।
बस वो मेरे पास से उठकर गए हैं, तो उसके बाद जो है फिर मैं उनका चेहरा देख पाया। और आज 2 महीने हो गए, 9 तारीख को जो है आधी रात को उनके हार्ट में ऐसा कुछ क्लॉट आया कि बस उनका हार्ट एकदम से बंद हो गया। हाँ, मेरी जो नीस है वो वहां पर, हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल वाले सारे जानने वाले थे, वो वीडियो कॉलिंग पर डॉक्टर के साथ जो है वो हर 2 घंटे बाद रहती थी, और उसने मेरे को बताया कि रात 12:15 के करीब जो है डॉक्टर्स ने जब कहा कि सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, रात 12:15 के करीब जो है मेरी नीस ने, वो वृंदावन में थी, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जो है, जो भागवत गीता के प्रचारक है, उनकी वाइफ है, तो उसने रात को पंजाबी बाग से जो है तुलसी जल मंगवाया और तुलसी की माला मंगवाई। और डॉक्टर्स का कहना है कि हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने इंसिस्ट किया, तो उनके गले में जो है तुलसी जल डाला है और माला पहनाई है, और कुछ ही समय में उनका हार्ट बंद हो गया। और मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा हो गया। और अगले दिन सुबह, मतलब ये 9 तारीख आधी रात की बात है, तो बच्चे तो मेरे जो है, मेरा बेटा और डॉटर, वो दोनों रात को उन्होंने बुला लिया था, हॉस्पिटल के बाहर ही थे आधी रात से ही। तो सुबह मेरे को उन्होंने वार्ड से जो है बगल वाले रूम में शिफ्ट किया। हालांकि मेरा ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो चुका था, और मैं पिछले 2 दिन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहा था बेड पर बैठा हुआ, और डॉक्टर मेरे को बोल रहे थे ठीक है, आपका आपका ऑक्सीजन भी हट चुका है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप थोड़ा वॉक भी कीजिए अब आप। तो जब रूम में शिफ्ट किया सुबह 8 बजे के करीब, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी वाइफ भी थोड़ी देर में आ जाएगी, वार्ड में थोड़ा इनकन्वीनियंस तो होता ही है।
जी।
लेकिन 9 बजे के आसपास मेरा बेटा और डॉटर दोनों जो है वो पीपी किट पहनकर एकदम से मेरे सामने खड़े हो गए। तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बैठे मेरे पास, मेरी डॉटर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पापा, रात को मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, और वो भगवान ने अपने पास बुला लिया। रोना तो आता ही है, इसमें नेचुरल है वो। तो डॉक्टर बड़े चिंतित थे कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कहीं फिर डिप ना कर जाए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन लेवल मेरा आप चेक करते जाइए, 97-98 था। तो उसके बाद एक घंटे के बाद ही जो है डेड बॉडी उन्होंने दी। मेरा बेटा जो है वो अकेला गया संस्कार करने के लिए, अकेला ही था। एक दोस्त उसका किसी तरह से उसने उसके साथ मिल गया, लेकिन वो अकेला ही था। पंजाबी बाग वहां पर जो है क्रिमेशन ग्राउंड में संस्कार करके आया, और डॉक्टर तो है वो बाहर ही खड़ी रही शमशान भूमि के अंदर, कहती मैं नहीं जा पाई, मेरी हिम्मत नहीं थी। 1 बजे के करीब मेरे पास आए, तो हर आधे घंटे बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे। और मैं आई कौन था डॉक्टर, मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, मैं मेरे को रोना भी आ रहा है लेकिन मेरे को भूख भी लग रही है, क्योंकि कोरोना में भूख बहुत लगती है
जी।
तो आप बैठिए मेरे पास। तो बोले हमें घबराहट हो रही है कि आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए बहुत, और आपको हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। सो आई सेड नथिंग डूइंग, देन आई सेड के डॉक्टर जस्ट रिमेम्बर, मैंने कुछ वाल्मीकि रामायण पर रिसर्च की है, और मेरी एक किताब है उसमें एक चैप्टर है जिसको मैं अगली किताब में और अच्छी तरह से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मृत्यु के बारे में श्री राम क्या कहते हैं।
जी
तो मैं आप अभी मेरा बेटा संस्कार के लिए गया हुआ है, डॉक्टर वहां गई हुई है, मैं यहाँ खाना भी खा रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, लेकिन मैं जो है साथ ही साथ जो है जो श्री राम ने मृत्यु के बारे में कहा है, मैं अपने उन्हीं लिखे हुए बातों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मृत्यु चीज क्या है। तो आप घबराइए मत, ये जीवन है और मृत्यु है। तो वो डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अगर आपके पास 1 मिनट है तो यहाँ रुक जाइए, कहता नहीं मेरे पास पूरा टाइम है। तो मैंने कहा कि देखिए ये आंसू आना रोना ये रहेगा, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जब श्री राम को जो है उनके पिता श्री दशरथ ने कहा कि तुम्हें जो है कल से राजपाट संभालना है, और आज जो है शाम को तुम्हें मैं ये खबर सुना दी, अब जाकर तैयारी करो, उत्सव मनाओ, श्री राम को कोई खुशी नहीं हुई। और जब अगले दिन जो है उनको कहा कि बेटा ऐसा है, तुम्हें इसकी बजाय राज्य की बजाय तुम्हें जो है जंगल में जाना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए, तो श्री राम को कोई अफसोस नहीं हुआ। अब वो तो थे श्री राम कि उनके लिए जो है सुख और दुख, खुशी और गमी जो भी है वो एक बराबर थी। लेकिन उससे मैंने सबक क्या सीखा है कि एक एक इंसान की जिंदगी में एक डेस्टिनी है, कभी कभी एक ऐसा रोल प्ले करती है कि इंसान बचक्का सा खड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं स्तंभित सा हो जाता है। अब ऐसे में वो क्या करे, शोक मनाए, बिल्कुल शोक आएगा, लेकिन उस शोक के सहारे वो अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकता,
जी।
आगे नहीं ले जा सकता। मेरे मेरे सामने क्या है, मेरे सामने मेरा बेटा है, मेरी डॉटर है, दोनों की शादी करनी है, बड़ी जोरों शोरों से जो है हम लड़की तलाश कर रहे थे, मेरी डॉटर ने सितंबर में मास्टर्स का कोर्स करने के लिए इंग्लैंड जाना था, तो हम सोच रहे थे कि इसके जाने से पहले बेटे की कुछ ना कुछ सेरेमनी कर दे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है,
जी जी,
नंबर वन। नंबर टू, मैं जो है जब हम इकट्ठे रहते भी थे तो इकट्ठे रहते हुए जो है मैं क्या करता था, मैं सुबह जो है कभी गोल्फ खेलने चला जाता था, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ता था, मैं किताब लिखता था, मैं कॉलेज चला जाता था, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मैं उनसे पीछे नहीं हटूं। उसकी जो कमी रहेगी वो रहेगी, हर मौसम में उसकी कमी रहेगी, हर त्योहार में उसकी कमी रहेगी, लेकिन उसकी कमी के होने की वजह से अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाऊं तो मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, मेरे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो ये चीजें जो है नहीं होने देनी है। क्यों? क्योंकि मैडम मैं ये जो आपको जो बात कह रहा हूं ना आज, ये मैं जो मेरे को मिलने आता मैं उसी को ये सब कुछ बातें ये कह रहा हूं कि सूरज ने तो सुबह उगना बंद नहीं कर दिया
जी, आपने मुझे भी कही,
आपको भी मैंने कहा था ना, ना चंद्रमा ने जो है अपनी चांदनी बिखेरनी बंद कर दी, ना हवा ने चलना बंद कर दिया, ना मैंने खाना खाना बंद कर दिया, ना मैंने रोना या हंसना बंद कर दिया, ना मैंने कपड़े पहनने बंद कर दिए, मेरी जिंदगी में जो हो रहा था वो तो चल रहा है, वो कमी अपने आप में है। आपको जैसे मैंने बताया
जी,
कि आज के दिन 2 महीने हो गए, तो आज सुबह बेटा हमारा यहाँ नहीं है, वो दिल्ली कुछ दिनों के लिए गया, तो सुबह मैं और मेरी डॉटर उठे, एक दूसरे की तरफ देखा, हम दोनों को रोना आ गया, हम रोए, गले मिलकर रोए। फिर उसके बाद क्या पापा, अब क्या करना, मैंने कहा ठीक है, अब बताओ भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाए आज, लंच में क्या क्या खाना है? क्यों भाई, काम करने हैं, रोना भी है और कर्म भी है, कर्म को तो भूल नहीं सकते। अब दूसरी बात मैडम, जिंदगी क्या पीछे को जाएगी कि आगे को जाएगी?
बिल्कुल सर, आगे को।
जिंदगी तो आगे को जाएगी। जब जिंदगी आगे को चलनी है तो उसको जो है एक कर्म योगी की तरह अपना फर्ज निभाते हुए हमें जिंदगी को बिताना है।
बहुत
जैसा कि आपसे मेरी बात होती रहती है, आज तो मेरा मेरा मन नहीं था, इसलिए होता है कभी कभी, लेकिन मेरा अगली जो किताब है वो भी वाल्मीकि रामायण के ऊपर मैं लिख रहा हूँ।
जी सर,
और ये जो है हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने उसकी इंट्रोडक्शन लिख दी थी, मैंने वाइफ को पढ़ाया भी था, कहती बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन बना है।
जी आप
मैंने
जब
उसको ये
घर गए थे तभी आपने बोला था सर अपनी डॉटर के लिए कि आपने उसका लिख लिया है।
जी मैडम, जी मैडम,
जी
और मैंने उसके पांच कौन से चैप्टर हैं वो भी अपनी वाइफ, मैं वाइफ को भी कभी कभी पढ़ाता रहता था कि जरा देखना कैसे है, जरा देखना कैसे है, कि ये मेरे पांच चैप्टर होंगे। तो अगली किताब भी मेरी वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस्ड है, मैं वो काम करना तो बंद नहीं किया, और आज मैं आपको बताऊं मैं उसके 30 पेज ऑलरेडी लिख चुका हूं पिछले एक महीने में, है ना। ये मैंने बंद नहीं किया। कल मेरा सारा दिन कॉलेज में रहा, कॉलेज की इंस्पेक्शन थी, जो यूनिवर्सिटी से टीम आई हुई थी, उसके लिए हमें नए कोर्सेज शुरू करने हैं अगले सेशन में, हमने कॉलेज को और कैसे ऊंचा उठाना है वो मैंने काम बंद नहीं किया। मैंने खेलना शुरू नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता मुझे अभी बॉडी मेरी खेलने के लिए भी फिट नहीं है। मैं सिर्फ शाम को एक घंटा वॉक करता हूं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूं। तो जब मैंने ये बंद नहीं किया, वो बंद नहीं किया, ये मैं करने जा रहा हूं, तो मैं अपने कर्म अपने फर्ज से पीछे कैसे हट जाऊं?
बहुत अच्छी,
कैसे पीछे हट जाऊं? और दूसरे मैडम, एक तो ये बात, दूसरे क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अमर है?
बिल्कुल नहीं।
कोई कह सकता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं? हालांकि मृत्यु एक ऐसी चीज है कि अपनी वाइफ की मृत्यु होने पर भी मेरे को ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु
बिल्कुल
एक ऐसी चीज है जिसको देखकर हर इंसान सोचता है सबने मर जाना पर मैंने नहीं मरना।
बिल्कुल ठीक सर,
अपने आप को वो कहता रहता कि ये तो उसके साथ हो गया, वो कोरोना हो गया, उसको अटैक आ गया, उसको बीमारी हो गई, उसको एक्सीडेंट हो गया, मैं सब ठीक ठाक हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक सत्य है कि अंत तो सबका ही है,
जी
कब है वो मालूम नहीं। हाँ, असमय हो जाए तो बहुत अफसोस होता है,
जी
असमय हो जाए तो बहुत अफसोस होता है कि ये समय नहीं था। कभी कभी मैडम हमने देखा है कि सभी के होता है घरों में, हम दादा नाना नानी बुजुर्ग 80 साल 85 साल 90 साल के हो गए, बीमार रहने लग गए, और फिर जो है कभी एक समय आता है जब उनको अपना वो शरीर छोड़ देते हैं। उनके साथ अटैचमेंट होती है, मोह होता है, लेकिन जो दुख का लेवल है वो कुछ अलग तरह का होता है।
जी,
लेकिन अगर कोई असमय चले जाए तो उसका जो शोक होता है ना वो आपको काफी दिन तक कचोटता रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया।
जी समय के साथ बढ़ जाता है सर जिसका असमय जो
जी मैडम,
जी।
अब ये देखिए, यहां मैं एक छोटी सी एक आपको और बात बता दूं जिसको डेस्टिनी बोलते हैं।
जी,
अब राजा दशरथ जो है, जब उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने श्री राम जो उनके सबसे प्रिय पुत्र है, जो सबसे योग्य है, जिनमें सारी क्वालिटीज है, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना है, लेकिन उसकी खबर सुनाने के लिए उसकी माता कौशल्या के महल में नहीं जा रहे, वो जा रहे खबर सुनाने के लिए कैकेयी के।
जी,
यहां पर एक डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रहा है। और अगर कोई सुनने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के, अगर कोई स्टूडेंट है या जिनको शौक है, इंग्लिश लिटरेचर में एक ऑथर था थॉमस हार्डी।
जी,
थॉमस हार्डी की बहुत किताबें फेमस है, सबसे बड़ी फेमस उसकी टैस थी, टैस, इसके अलावा मेयर ऑफ द कैसर ब्रिज, अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज, बहुत सारी ऐसी हैं, ट्रम्पेट मेजर वगैरह मेरे पास पढ़ी है, मैंने पढ़ी भी है कॉलेज डेज में, अब कभी कभी पढ़ता भी हूँ। वो डेस्टिनी की बात करता है कि इंसान की जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा एकदम अचानक ऐसा हो जाता है जिसको जिसका उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं हुआ होता।
जी,
वो अच्छा है बुरा है ये 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 कोई नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकता। अब तीसरी बात मैडम, भाई एक दोहे की एक ही लाइन मुझे याद आ रही है, पता नहीं कबीर जी का किसका, के मानस केरा पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, है ना। तो ये बुलबुला है जी,
जी,
जी। कबीर जी,
जी
का
है, जाएगा जो तारा पर भाग जी, कबीर जी,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल में पढ़ा करते थे ना बचपन में, हम हमारे टाइम में तो स्कूलों में जो है ये दोहे होते थे, आजकल तो दोहे है ही नहीं है। मानव मनुष्य का शरीर का जीवन जो है वो तो एक पानी के बुलबुले की तरह है, और जब तक जो फूला हुआ है आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, वो एकदम से कब फट जाएगा किसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। एक और बात भाई, कितनी उम्र है सबकी? कोई रेयर होगा जिसकी उम्र को 90 और 100 साल की होगी, कोई दिलीप कुमार जैसे या कोई और कोई, अदरवाइज एवरेज एवरेज एज इज हाउ मच से 75 80 85। तो ये सब 70 75 साल का ही एक खेल तमाशा है।
जी
तो इस खेल तमाशे में आपको जो है अपने फर्ज, अपने शौक, अपनी ड्यूटीज, उन सबसे जो है उन सबको पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पीछे नहीं हटना। अगर आज मैं हताश होकर बैठ जाऊं, निराश होकर बैठ जाऊं, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी परेशान कर रहूंगा, अपने बच्चों को भी परेशान करूंगा, है ना। अब ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया कि आज आज हम सुबह उठे, हम दोनों को बस ऐसे आज 2 महीने हो गए, उसने इतना ही कहा, हमको रोना आ गया। ये रोना क्या है? ये रोना अपने हमारे दिल में पड़े पड़े हुए मैं उनके लिए जो प्यार है, वो प्यार आंसुओं की शेप लेकर जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते,
बिल्कुल
है ना। तो कोरोना काल में मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेजेडीज बहुतों के साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, जो भी सुन रहे हैं हिम्मत नहीं हारना। जब तक शरीर में सांस है, जब तक शरीर में जान है, तब तक जो है इसको एक्टिव बनाकर रखना। और मैडम फौज में मैंने 21 साल में क्या सीखा? डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके एक्सरसाइज करने का, आपके एंटरटेनमेंट का, वो होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन के साथ जी
आपसे मैंने ये चीज सीखी है सर, अनुशासन। आप वाकई में आप ठीक कह रहे हैं, आप तो सेना में थे तो आपने वहां सीखा, और मैं आपसे सीखती हूँ कि कैसे आप टाइम कितने पंक्चुअल हैं, या जो भी बातें आज आप सर कह रहे हैं वो आप ही कह सकते हैं, सब नहीं कह सकते इन बातें।
जी बिल्कुल मैडम। और अगर किसी के पास अपने शरीर के लिए समय नहीं है तो किस चीज के लिए समय है? शायद कभी कभी मैं अपने बच्चों से भी बात करता हूँ कि मेरे को भी लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, वाइफ को भी हुआ, बेटी को भी हुआ, लेकिन मेरा ठीक होना शुरू हो गया। मैं उनको बोलता हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि मैं खेलता था, शायद इसलिए पिछले जो है जब से कोरोना आया है तब से नहीं, मैं पिछले कई सालों से जब मैं शाम को अपनी एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं देर तक जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, और वो सारा 100 200 बार करता हूँ, शायद शायद मेरी लंग्स जो है मेरी को सहार पाए। शायद अगर ये बात सच है मेरी शायद वाली, तो इसका मतलब कि आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपने शरीर को, जितना आप उसको जो है उस मशीन को जितना चलाते रहेंगे उतना ही जो है वो आपका साथ देगा।
बिल्कुल ठीक सर।
तो अगर हमारे पास 24 घंटे में 45 मिनट या आधा घंटा अपने शरीर के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है? किस लिए है? तो मैंने जो है अभी भी जैसे मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आपको वार्ड में वॉक शुरू कीजिए, मैं वार्ड में स्टेप गिने, फिर मैं सीधा गया 25 स्टेप, वापस आया, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल ठीक रहा। शाम को जो है मैं 25 × 4 100 स्टेप करूंगा, कल जो है मैं 200 करूंगा। मैं यहाँ घर पर आया, हमारे बाहर फ्लैट है जहां, वहां पर एक ट्रैक बना हुआ 300 मीटर का, तो एक हफ्ता तक तो मैं घर के बाहर ही सैर करता रहा, फिर मैं गया, मैं 300 मीटर की एक सैर एक राउंड लगा के बेंच पर बैठ गया। अब मैं जो है 300 मीटर के 3 राउंड लगाता हूँ फिर बेंच पर बैठता हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं धीरे धीरे जॉगिंग करनी शुरू कर देता हूँ। तो ये अपने शरीर को मजबूत करना जो है ये आप ही को करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो सो का जो थर्ड वेव आने का जो खतरा दिखाई दे रहा वो उससे कैसे बचेंगे?
जी सर,
हवा में जहर है, पानी में जहर है, खाने में जहर है आज, तो आपका शरीर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही होंगे, और शरीर के साथ साथ आपका मन, और शरीर और मन जो है वो इसलिए स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है कि जीवन जो है वो आगे ही को जाना है, पीछे को नहीं आना। यादें भी रहेंगी, दुख भी रहेगा, रोना भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर रो कर या दुख मनाकर हम वापस ला सकते तो सारे जने मिलकर बैठकर रो लेते 2 4 दिन। और ये मैडम ये जो दुख और रोना होता है ना ये सब पर्सनल होता है, कुछ समय के बाद हर रिश्तेदार हर कोई अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है, माँ बाप का बच्चों के प्रति और पति पत्नी का ये जो रिश्ता होता है ना ये रिश्ते में जो है दुख जो है उनका दुख उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
नहीं सर, बिल्कुल
तो आज मैं यही कहना चाहूंगा अपने संदेश में कि ट्रेजेडी तो बहुतों की लाइफ में आई होगी, आती रहती है, ट्रेजेडी से दुख भी होता है, बहुत होता है, लेकिन हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, जीवन ऐसे ही आगे चलेगा। मेरे मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को कहा था कि लाइफ इज नथिंग बट इट्स ए सेटबैक। इस लाइफ जिंदगी में सेटबैक ही सेटबैक है, आपको सेटबैक में से कुछ मोमेंट्स जो है चुराने पड़ते हैं खुशी।
वाह, बहुत अच्छी बात है,
चुराने पड़ते।
और अगर सर आप ऐसे ही रोते रहते तो आप बच्चों का भी उनका भी मतलब बुरा हाल होता आपको देखकर, और मिलता आपको कुछ नहीं कि मैम तो आना जाती हैं आपके रोने से।
मैडम
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें की
हर
सर।
पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते होते हैं,
बिल्कुल सर,
प्यार की था जो है वो उन्हीं को पता होती है, लेकिन कईयों को ज्यादा होता है, कईयों को थोड़ा कम होता है, लेकिन प्यार तो बहुत होता है पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। अब उस प्यार की कमी को तो जो है कोई पूरा नहीं कर सकता, और तो वो जो दुख और गम है उसको दिल में रखने की बजाय अच्छा है कि आप आंसू के जरिए बाहर निकाल दें,
जी
बाहर निकाल दें, आपका मन हल्का हो जाता है, आपकी बॉडी हल्की हो जाती है, और आप सोचते हो कि चलो भाई अब मैं ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं आगे चलू आगे चलू। अभी क्या कर रहा हूँ, मेरी डॉटर को कुछ काम था, वो मार्केट गई है, तो मैं वाइफ की अलमारी खोली तो मेरे को उसकी साड़ियां देखकर मेरी आंखें भर गई। मेरे को अचानक ख्याल आया कि वो भाई 6 बजने वाले हैं, उठो, मैं फटाफट जो है 7:45 बजे के आसपास मुंह धोया, चाय का कप बनाया, मैं तैयार हो गया। तो ये चलेगा मैडम, ये चलेगा, चलेगा।
बिल्कुल सर, बहुत सर आपने ऐसी बातें कर दी कि मतलब मैं अब कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, और आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया
जी मैडम,
इस मौके पर, इस तरह की बात, मतलब मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मैं आपसे बोलूं कि आप इस तरह की बातें हमें कहें,
थैंक यू वेरी मच मैम,
और
बहुत बहुत धन्यवाद,
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।